तीन प्रकार की सत्ता देखी जाती है। आदि भौतिक जगत की सत्ता अस्तित्व से रेलगाड़ी है, जहाज है, यातायात है, आदि भौतिक साधनों का भी अपना उपयोग महत्वपूर्ण होता है। आदि दैविक इससे भी ज्यादा प्रभावशाली है, लेकिन आदि भौतिक और आदि दैविक में कितना भी आदमी ऊपर उठ जाए, विकसित हो जाए, आध्यात्मिक प्रसाद जब तक सद्गुरु का नहीं मिला, नहीं पाया, तब तक हिरण्यकश्यपु जैसा सोने का हिरणपुर बना ले पब्लिक के लिए और नजर डालते ही खेत खली पैदा हो जाए, समुद्र रत्नाकर रत्न देने लग जाए, पर्वत पहाड़ सोना चांदी रूपा तांबा उगलने लग जाए, फिर भी हिरण्यकश्यपु को तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि ये जीवात्मा मूल तृप्त परमात्मा का सनातन अविभाज्य अंग है। जो जिसको स्वरूप होता है उसको मिले बिना उसकी दौड़ पूरी नहीं होती। जैसे समुद्र से पानी उठता है तो कहीं भी पानी गिराओ नीचे की तरफ जाएगा, समुद्र की तरफ जाएगा, छोटी नाली बनेगी, बड़ी नाली में जाएगी, बड़ी नाली और बड़ी नाली में, फिर नदी में, नदी समुद्र में, अथवा बाष्पीभूत होकर वर्षा करके व्यापक होता जाएगा। सूर्य के किरणों में डी विटामिन, ए विटामिन, सी आदि जो होते हैं कितना प्रभावशाली होते हैं कि अल्ट्रासाउंड और दूसरे सेकों से जो टीबी आदि या कैंसर नहीं मिटाया जा सकता, अभी विज्ञानी बोलते हैं कि सूर्य के किरणों से मिटाया जा सकता। मैं तो कई वर्षों से कह रहा हूं, बच्चे का नाभि छेदन तुरंत करने से और 3 मिनट के बाद करने से, अभी प्रयोग किए किसी ने अपना सुन के कैसे भी, बोले 45% हेमोग्लोबिन उन बच्चों का ज्यादा दिखा जो 3 मिनट के बाद नाभि छेदन किया गया। ओमकार का अ और आखिरी का म, उसके बीच अष्टदा प्रकृति का मनोराज्य आपको नहीं फंसाएगा। काम, क्रोध, लोभ ये सब शांत रहेंगे, विवेक जगेगा, वैराग्य जगेगा, षट संपत्ति जगेगी। आपकी जो पुरानी गंदी आदतें हैं उसमें फिसलते रहते, उससे निकलने का बल तुम्हारे आत्मदेव में, परमेश्वर तत्व में, गुरु तत्व में है। केवल लौकिक फायदे उठाने की इच्छा छोड़ दो। लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, सब जगह जाते हैं, लेकिन रह जाता है कहीं न कहीं, रुकावट में हम रुक जाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन बड़ा बदनाम व्यक्ति था, लेकिन एक बार कुछ फकीरों के संग से ऐसी कुछ बात सीख के आया कि उसने आकर प्रचार कर दिया कि ये धर्म गुरु और मुल्ला मौलवी जानते कुछ नहीं और ठेका लेके बैठे अल्लाह का, भगवान का, गॉड का। ऐसे ही प्रशासन वाले भी कुछ नहीं जानते, दुनिया पर शासन करने की वासना से ही भागे जा रहे हैं। जिस पर शासन करना है उस मन पर, इंद्रियों पर, विकारों पर तो कर नहीं सकते, और दूसरों पर शासन करने के लगाम में, वासना में, ख्वाहिशों में, इस्लाम खतरे में, धर्म खतरे में, मार काट करते करवाते हैं, ये अहंकारी लोगों की देन है। समाज में झगड़े, अशांति, राष्ट्र राष्ट्र के प्रति, राज्य राज्य के प्रति, व्यक्ति व्यक्ति के प्रति, ये अहंकार और नासमझी का ही कारण है। उसने अपना जो फकीर से सुनकर आया भाषण करना चालू कर दिया, तो मुल्ला मौलवियों ने, साधु संतों ने, प्रशासनों ने राजा को शिकायत कर दी कि ये मुल्ला नसरुद्दीन बगावती हो गया है, सारे मजहब वालों को कोसता है और प्रशासन को कोसता है। राजा ने बुलाया कि तुमने बगावत का काम शुरू किया, ये शिकायत आ रही है। बोले बगावत नहीं है, जहां पर मैं सच्ची बात कहता हूं लोग इसे बगावत बोलकर आपको बहकाते हैं, परीक्षा हो जाए, अगर मेरी बगावत साबित हो तो मुझे दंड मिलना चाहिए, और उनकी झूठी शिकायत है तो उनको नालत होनी चाहिए। राजा को बात जच गई, परसों सभा होगी, और जो शिकायत करता है मुख्य मुख्य वही राज दरबार में प्रसिद्ध प्रसिद्ध मुल्ला मौलवी उलेमा, कोई धर्म गुरु कोई फादर जो भी हो इकट्ठे कर दिए जाएंगे, और प्रशासन के तरफ से भी जो बड़े बड़े मंत्री अधिकारी हैं। मुल्ला आया, मुल्ला ने कहा सब इकट्ठे हो गए, जहां पना एक रहमत करिए, सबको कागज और पेंसिल दिलवाई, मैं एक सवाल पूछता हूं उसका वो जवाब दे देंगे, तो मैं इनकी चरण जूती को सिजदा करूंगा, अगर जरा आप जवाब न दे पाए तो आप ही नालत करोगे। राजा को ये बात भी जच गई। मुल्ला ने एक ही सवाल पूछा सभी की ओर देखते के, भाइयों अल्लाह के बारे में भगवान के बारे में गॉड के बारे में आप लोग भाषण करते व्याख्या देते हो, आप में से किसी ने अल्लाह को देखा है क्या, गॉड को भगवान को? वो बात दूर रही, क्योंकि मैंने ही नहीं देखा तो मैं आपकी परीक्षा नहीं ले सकता हूं, लेकिन रोटी को आपने देखा है, खाया भी है, रोटी से आप बड़े भी हुए, रोटी क्या चीज होती है मेरा सवाल का जवाब आप अपने अपने कागज में लिखिए और जहां पना के कदमों में रखिए, तो सभी के कागज न पढ़े जाए तो खास 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 बीच बीच में से उठा के 5, 25, 50, 100, 200 कागज पढ़ो। सभा को आके ये बात हो, युक्ति युक्त है, तर्क संगत है, प्रशासन वालों को कागज पेन मिल गई, उनको मिल गई, सब अब पढ़ा जाए रोटी क्या होती, यही सवाल है मुल्ला नसरुद्दीन का। किसी ने लिखा कि आटे के लोंदे से रोटी बनती है, किसी ने कहा बाजरी की रोटी होती है, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, जितनी खोपड़ियां थी उतना ही रोटी के लिए अलग अलग लोगों ने लिख डाला। जहां पना जिस रोटी को रोज देखते हैं खाते उसमें ये एक मत नहीं है, तो अल्लाह के बारे में गॉड के बारे में लोगों को डांडी पीट कर जो रास्ता दिखाएंगे वो कैसा दिखाएंगे? रोटी के बारे में जो रोटी खाते हैं उसके बारे में ये सब प्रशासन वाले एक मत नहीं है, तो अपने मन पर शासन करने की कला नहीं है, अपने ख्यालों पर शासन करने की कला नहीं है, तो दूसरों पर शासन करके हिकरी और शेखी बघाड़ते हैं कि और कुछ करते हैं। राजा विचारवान था कि मुल्ला तुमने आज तक तो तुम्हारी बदनामी सुनी थी, लेकिन आज किसी भी फकीर के सत्संग से चाहे तुम सीख के लाए हो लेकिन बात बिल्कुल जगाने वाली है, रोटी के बारे में भी लोग एक मत नहीं। किसी ने लिखा भूख मिटाए रोटी हो तो फल से भी भूख मिटती, मक्काई की रोटी होती है, ज्वार की रोटी होती है, बाजरे की रोटी होती है, रोटी में एक मत नहीं है। तो जब तक शरीर को मैं मानेंगे और मन बुद्धि और अहंकार में रहेंगे तब आप एक मत नहीं हो सकते, क्योंकि एक तत्व के तरफ आपकी नजरिया ही नहीं है, तत्व से वास्तविक में सब एक मत हो सकते। आंख देखती है सुन नहीं सकती, नाक सूंघता है चख नहीं सकता, जीभ चखती है देख नहीं सकती, हाथ और त्वचा छूती है लेकिन सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। पांचों इंद्रियों का अलग अलग विभाग है लेकिन पांचों इंद्रियों को देखने सुनने सूंघने चखने को मन जानता है, मन चंचल है कि शांत है उसको बुद्धि जानती है, बुद्धि हमारी ठीक है कि बेठीक है उसको जीव जानता है। और ये सब ठीक होते तो जीव अहंकार करता है मैं सदाचारी हूं अच्छा हूं, और बेठीक होते तो जीव अहंकार करता है मैं बुरा हूं पापी हूं। लेकिन ये हो के मिट जाता है अष्टधा प्रकृति में। उसके पार कौन है इस बात की खबर जिनको है, ऐसे गुरुओं के चरणों में गए बिना। 60,000 वर्ष तपस्या करने वाला भी रोता हुआ जाता है, हिरण्यकश्यप रावण और बड़े बड़े सिकंदर दारा कारून खजाने के मालिक सारे के सारे इस अष्टधा प्रकृति में आपाधापी करते करते रोते हुए जन्मते हैं, फरियाद करते हुए जीते और निराश होकर मर जाते हैं। धनभागी वे लोग हैं जो फकीरों का संग पाते हैं। अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। इंद्रपद मिल जाए, कुबेर का भंडार मिल जाए, वरुण का पावर मिल जाए 12 मेघों पर, इंद्र और वरुण का, ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि बनाने का प्रभाव भी निखर जाए, शिव जी जैसा संहार करने का सामर्थ्य भी आ जाए। लेकिन रामायण कहता है गुरु बिना भवनिधि तरह ही न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम हो गई। बिरंची माना ब्रह्मा जी, शंकर जी माना त्रंबकेश्वर परलय करता। तो गुरु क्या है? गु माना अंधकार, रू माना प्रकाश। हमारे शुद्ध मैं पर जो नासमझी का अंधकार है उसको अपने संस्कारों के द्वारा, उपदेशों के द्वारा हटाते हटाते हमें अपने असली स्वभाव में जगा दे। दुखी मन होता है, बीमार शरीर होता है, चिंता चित्त में होती, उसको जानने वाले तुम इनसे निर्लेप हो। इस शरीर को पांच भौतिक शरीर है, इसमें पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश। बताओ इन पांचों में से तुम कौन हो? शरीर में जल ये अंश है मानोगे, अग्नि अंश है मानोगे, वायु अंश है मानोगे, आकाश अंश है मानोगे, नास्तिक होने पर भी मानोगे, पृथ्वी तत्व है मानोगे। इन पांचों में से आप कौन सा तत्व है? अथवा ये पांचों पांच आप हैं क्या? अगर पांचों पांच है तो ये पांचों पांच रोज बदलते रहते हैं, और पांचों पांच से बना हुआ शरीर बचपन का भी बदल गया, फिर भी आप हैं। तो एक तत्व है इनों में से कि पांच है? बोले ना, हम एक हैं ना पांच है। तो ये पांच तत्व आप शरीर के नहीं हो, तो वास्तव में शरीर आप हो ही नहीं, शरीर आपका नहीं है। लेकिन इसी का थोड़ा रखा हुआ नाम पर थोड़ा सा जरा गुरुजी बोल देता है तो आफादाफी हो जाती है, कोई वाह वाह कर देता है तो बांछे खिल जाती है। ये कितना अज्ञान है। अगर गलती है तो खुशी मनाओ कि दाता ने कृपा कर दी, और गलती नहीं दी है तो दाता मजबूत कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं भैया उद्धव, ये आत्मज्ञान की विद्या थोड़ी सी भी तत्परता से ध्यान से सुने। आत्मज्ञान देने वाले गुरु के प्रति वफादार रहे तो बड़ी बड़ी तपस्याओं वाले वहां नहीं पहुंचते जहां सत शिष्य हंसते खेलते पहुंच सकता है। सत लगा दिया, शिष्य तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन सत की भूख हो। सत एक परमात्मा है, अष्टधा प्रकृति बदलती है, सत जो का त्यों रहता है। सत आदि में था, सृष्टि के आदि में था, अब भी जो का त्यों भरपूर है और प्रलय होने के बाद भी रहता है। वास्तव में हम असली रूप में देखा जाए तो हम सत रूप हैं, चेतन रूप हैं, आनंद रूप हैं। उसी आनंद की झलक खुशी आती है, उसी चेतन की झलक से बुद्धि में ज्ञान आता है, उसी सत के प्रभाव से हमारा अस्तित्व है। शरीर मर गया, जलीय अंश में जल मिल जाएगा, मिटेगा नहीं। शरीर को जला दिया, पृथ्वी तत्व में पृथ्वी मिल जाएगी, मिटेगा नहीं। अग्नि तत्व में अग्नि मिल जाएगी, मिटेगी नहीं। आंखों से ओझल हो जाएगा पूरा शरीर, कब्रस्तान में अथवा शमशान में, लेकिन मिटेगा नहीं। वो अमिट हमारा तत्व है। और फिर शरीर छोड़ने के बाद भी हम रहते हैं, अष्टदा प्रकृति को चलाने वाले हम रहते हैं, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे नरक में रहे, चाहे ब्रह्मलोक में रहे, तो हमारा नाश नहीं होता। असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणश्च। ये असंग है, अष्टदा प्रकृति हो के बदल जाती, लेकिन हम असंग है। बचपन बदल गया, बचपन की बुद्धि बेवकूफी अच्छाई बुराई बदल गई, उसको जानने वाला असंग है कि नहीं। लेकिन अब मैं ऐसी हूं, अब मैं ऐसा हूं, तो होता किसी में है और मानता अपने में है। इसको बोलते अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जनतवा। अज्ञान से जिनका शुद्ध ज्ञान ढक गया है सदियों से, वे जंतु की नाई भटक रहे बिचारे। जितनी मनुष्य की ऊंचाई चाहिए उतनी ऊंचाई को छुआ हुआ अर्जुन था, सशरीर स्वर्ग में गया। और अप्सराओं में शिरोमणि ऐसी उर्वंशी उन पर फिदा हो गई, अर्जुन ने अपनी कमर तोड़ कार्यक्रम की सम्मति नहीं दी। उसने श्राप देना चाहा, श्राप शिरोधार्य किया, लेकिन अपनी लंगोटी का बिर्द खुल से फिसले नहीं। ऐसे अर्जुन को भी जब तक श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान नहीं मिला, तो अर्जुन के हितेशी कृष्ण साथ में थे। अर्जुन ने कहा सेना के बीच में मेरा रथ ले चलो, ले चले, फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा। जब श्री कृष्ण का सत्संग अर्जुन ने समझा, अध्यात्म क्या है, आदि देवी क्या है, आदि भौतिक क्या है, उसकी जिज्ञासा श्री कृष्ण ने जगाई अर्जुन की, और फिर अर्जुन उसमें प्रवेश किया, तब बोलता है नष्टो मोह। अब मेरा मोह नष्ट हुआ, उल्टा ज्ञान नष्ट हुआ। नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, तव प्रसादात मया च्युत, आपके प्रसाद से। तो युद्ध के मैदान में भगवान हितेशी हैं, ऐसे जबरदस्त ऊंचाइयों को छूने वाला अर्जुन है, फिर भी उसको सत्संग मिला और सत्संग के अनुसार विचार करके अपनी वृत्ति ब्रह्माकार करनी पड़ती है। चिद अणु को व्यापक ब्रह्म में मिलाना पड़ता है। जैसे बुलबुला है तो चाहे कितना भी बड़ा बुलबुला बन जाए, दूसरे छोटे बुलबुलों के आगे वो बड़ा आदमी है, लेकिन वास्तव में है तुच्छ। वो बुलबुला अपने को खाली पानी मान ले तो विभु है, महान है। ऐसे ही ये जीव वास्तव में अपने गुरु तत्व के साथ तादात्म्य कर ले। प्रिय संधे प्यार में मिड़ई मिठाई, काने जा कड़ाई चखी जो चाह करे। महमूद नाम का एक खुश मिजाजी राजा हो गया, रेशमी कपड़े पहनने का वो शौकीन था। उसका मंत्री राजा का सानिध्य पाने में शौकीन था। दोनों घोड़े सवारी करते हुए जंगल में सैर करते, आखेट आदि जो भी होगा, उलझ गए। मध्यरात्रि हो गई, कहीं रास्ता मिले नहीं, चांदनी रात में इधर से उधर दिशा, कहीं रात को कैसे भी झोंका बोका खा के पड़े रहे, सुबह हुआ कहां है पता नहीं, भूख सताई, कल दोपहर का खाया हुआ था। कोई जंगली फल मिल गया, महमूद ने निकाला छोटा सा जो चाकू था साथ में, चार टुकड़े किए, दो मंत्री को दिए, दो अपने लिए रखे। मंत्री ने चपाट सर के खा लिए, बोले जहां पड़ा और मुझे एक फाग दे दीजिए। तीन हिस्से मंत्री ने खा लिए, अब चौथा हिस्सा महमूद खाने जा रहा था, ना मालिक आप न खाइए, मुझे दीजिए। बोले क्या तो जे अकेले को भूख लगी है, ऐसा क्या इसमें तो क्या है, बोले बस बड़ा रस है, दीजिए। महमूद ने उसका आधा टुकड़ा दिया, मतलब 80-87% उसको दे दिया, बाकी एक छोटा टुकड़ा, 3.5 फाक चली गई, बाकी आधी फाक, नहीं नहीं आपने खाई, मुझे दीजिए, झपाझपी लग गई। लेकिन महमूद राजा था, मनोबल मुंह में डाला था, अच्छी अच्छी थूक दिया। बोले इतना कड़वा बेकार फल के लिए इतना तड़प रहा है। बोले मालिक, फल कड़वा है या बेकार है वो नहीं, किसके हाथों से मिल रहा है। भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय तो लो और प्रीति भी मेरे से करो और ज्ञान भी मेरा पाओ। जैसे मुनीम नौकर आश्रय तो सेठ का या सरकार का लेते, प्रीति शरीर से और परिवार से पैसों से है। भक्त भी आश्रय भगवान का लेता है, प्रीति शरीर के और अहम से होती है। अहम से और शरीर से प्रीति ना हो तो भक्त फिसल नहीं सकता। श्रद्धा होती है ना, ऐसी चीगम है कि 10% श्रद्धा भी श्रद्धा लगती है। श्रद्धा है माना, लेकिन श्रद्धा परिपक्व होकर प्रीति में बदले तो फिर कुछ नहीं होता। 10% श्रद्धा भी लगता कि श्रद्धा है, 80% श्रद्धा भी श्रद्धा है, लेकिन 100% श्रद्धा हो जाए, प्रीति में बदल जाए, तब व्यक्ति मद भक्ति लभते पराम, पराभक्ति को पाता है। पराभक्ति परम तत्व से एकाकार कर देती है। वैदिक भक्ति, गौणी भक्ति, अनुरागा भक्ति, ये अपनी अपनी ऊंचाई उतार चढ़ाव पे है। फिर हिम्मत करके तत्पर हो जाए तो पराभक्ति पे पहुंच जाए। जगत तुम्हें आदि भौतिक दिखता है, उसकी परवाह नहीं, लेकिन देखने की नजरिया तुम आध्यात्मिक करो। एक साइंटिस्ट को पीपल का पेड़ दिखेगा, पीपल का पेड़। वैद्य को देखेगा कि इसमें पित्त शामन सामर्थ्य है। पेड़ के छोटे छोटे पत्ते कूपल, उसका मुरब्बा बना के खा ले 10 ग्राम, कैसी भी गर्मी हो शांत। वैद्य की दृष्टि है पीपल का पेड़ सात्विक है, ये इसमें औषधियां छुपी है। विज्ञानी की दृष्टि है कि पीपल का पेड़ की लकड़ी ऐसे ऐसी है और उसके फर्नीचर से ऐसे ऐसे फायदे होंगे या ये होगा। भक्त समझता कि भगवान की सात्विक अभिव्यक्ति है। पीपल के पेड़ को धागा बांधेगा, घूमेगा, अच्युताय गोविंदाय अनंताय नम, और भी शनि देवता का पूजन आदि करेगा। लेकिन तत्ववेता बोलेगा कि वो ही पंचभूतों और अष्टधा प्रकृति में मेरा चमचम चमकने वाला चैतन्य है, अगर चैतन्य नहीं होता तो रस कैसे लाता, फल कैसे खिलते, फूल कैसे खिलते और सात्विक हवाएं कैसी बनती। ये ब्रह्म पीपल का पेड़ बनकर अपने आप को पोषित करता है। भौतिकवादी को भौतिक फायदा होगा, आयुर्वैदिक वादे को आयुर्वैदिक फायदा होगा, भगवत भाल वाले को अपना चित्त निर्माण होगा, और तत्ववेता निर्माण मोहा जित संग दोषा, अष्टदा प्रकृति के संग दोष से मुक्त अपने स्वरूप को ही देखेगा। अब कौन सी नजरिया तुम अपनाते हो उस पर तुम्हारा भविष्य है। किसी को लगेगा कि गुरु हमारे ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, किसी को लगेगा उपदेशक है। लिखते हैं बापू ने ये कहा, परम पूज्य बापू ने ये कहा, जिसकी जैसी नजरिया होती उस समय उनका चित्त भी ऐसे ही बन जाता है, और जैसा चित्त होता है ऐसे ही दिखता है। तो अब चित्त को उन्नत करना है, ऊंचा करना है, तो भगवान नाम आश्रय लेकर शांत होते जाओ तो विवेक बढ़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सु। दिने दिने नवम नवम नमामि नंदनंदनम। मनुष्य को जो चीज चाहिए वो उसके पास सहज सुलभ है। जैसे सबसे कीमती बहुत जरूरी श्वास चाहिए, सहज सुलभ है। पानी है तो निःशुल्क मिल सकता है जीने के लिए, पानी पीने के लिए। भोजन है तो सादगी से मिल जाता है, लेकिन चटोरापन चाहिए, वाइन चाहिए, शराब चाहिए, फलाना चाहिए, इसी गंदगी के लिए ही ज्यादा समय खर्च होता है। ऐसे हर मास के शरीर की वाहवाही चाहिए तो उसके लिए जीवन कई जिंदगियां खर्च हो जाती है। ये हर मास का शरीर क्या है? पंच भौतिक है। इसमें जो जलीय अंश है, खून थूक, ये वो जल विभाग का है। जो पोल है वो आकाश है। जो गर्मी है वो अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है। तो ये पांच भौतिक शरीर है। इसमें से आप पृथ्वी हो कि जल हो, तेज हो कि वायु हो कि आकाश हो, इन पांचों में आप क्या हो? एक हो कि पांचों हो? बोलो, बताओ कुछ। एक हो कि पांचों हो? तुम पांचों हो? न तुम एक हो न तुम पांचों हो। रोज जल बदलता है, भोजन पृथ्वी तत्व भी बदलता है, वायु भी बदलता रहता है, आकाश भी बदलता रहता है। और इस शरीर को अगर मैं मानते हो तो ये टिकेगा तो है नहीं। बचपन चला गया, जवानी बदल रही है, तो शरीर तो मर जाएगा। तो तुम एक भी नहीं हो, पांच भी नहीं हो, बिल्कुल पक्की बात है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम अभी मरो, देर मत करो। तुमको लगता है कि मैं झूठ बोलूंगा? अपने प्यारों की कसम झूठी खाऊंगा? मरे तुम्हारा पाप दुख चिंता अज्ञान, तुम क्यों मरो? तो न तुम एक तत्व हो न पांच तत्व हो। एक को पांच को तुम जानने वाले हो। आकाश का गुण शोभ है, वायु का गुण काम है, अग्नि का गुण क्रोध है, जल का गुण मोह है, पृथ्वी का गुण भय है। जिसमें पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है उसको भय बढ़ता है, तो वो दिया जला के रखे, ओमकार का गुंजन करे तो भय कम हो जाएगा। जीवन रसायन पुस्तक पढ़े, भय कम हो जाएगा। जब पृथ्वी की तन्मात्रा बढ़ती है शरीर में, स्वभाव में, तो आदमी भयभीत होता है। अगर जल की मात्रा बढ़ती है, अग्नि की मात्रा बढ़ती है, तो क्रोध होता है। आकाश से क्षोभ बढ़ता है, वायु की मात्रा बढ़ने से काम होता है, अग्नि तत्व बढ़ने से क्रोध होता है। जरा जरा बात में गुस्सा आ जाना, चिढ़ जाना, जल से मोह होता है, पृथ्वी से भय होता है, वो तन मात्राएं बढ़ती। तो भय मुझ में है, इसका आरोप न करो। पृथ्वी तत्व में भय आया, जल तत्व में मोह आया, अग्नि में काम विकार आया, अग्नि तत्व शोभ आया तो अवकाश के कारण। तो ये पंचभूतों के अंश है, आप इनको सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। ये सब बदलते, काम आता है चला जाता है, क्रोध आता है चला जाता है, लोभ आता है चला जाता है, मोह आता है चला जाता है, भय आता है चला जाता है। लेकिन आप कभी चले जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। लोग बोलते हैं अनुभूति अनुभूति अनुभूति। सबसे बड़ी है कि हम अमिट हैं और अनुभूतियां मिटने वाली। ये हो गया, ये दिख गया, ये दिख गया, तो अनुभूतियां हो के मिटती है ना। तो जो लोग अनुभूति करने के लिए साधना करते हैं, वे लोग साधना की महानता नहीं जानते हैं। अनुभूति होती है तो होने दो, नहीं हो तो उसका आग्रह मत करो। लेकिन अनुभूतियां हो के बदल जाती, वो कौन है? उसको खोजोगे तो शाश्वत की प्राप्ति हो जाएगी, नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, असंग तत्व की। गीता ने कहा असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणस्य। ये आत्मदेव वास्तव में असंग है और निर्गुण है। निर्गुण भी है और निराकार भी है। तो तुम सब वास्तव में असंग भी हो, निर्गुण भी हो, निराकार भी हो। आकृति पंच भौतिक शरीर की है, गुण भी पंचभूतों में है, अष्टधा प्रकृति में है। तो गुण दोष और आकृति ये आप नहीं हो, आपके शरीर में है। तो ऐसा ज्ञान का सुकृति से बहुत सारे दोष एकदम छू हो जाएंगे, बहुत सारे आकर्षण विकर्षण स्वाभाविक छू हो जाएंगे, किए हुए पाप माह से पिंड छूट जाएगा, किए हुए पुण्यों का अहंता नहीं रहेगी, शरीर में ममता नहीं रहेगी। तो वास्तविक में जो अहम है, जब वास्तविक में जो मैं है उधर आ गए तो अभी अभी निर्दुख हो जाएंगे सदा के लिए। अवास्तविक में मैं है और अहम है, मम है, इसीलिए कितना भी कुछ करते हैं लेकिन अंत नहीं होता, दुखों का अंत नहीं होता। कितना भी कुछ कर ले दुखों का अंत नहीं होता। क्यों? कि दुखालय संसार, दुखालय शरीर को मैं और मेरा मानकर कर रहे हैं, इसीलिए उसका अंत नहीं होता। तो वास्तव में तुम अनंत के अविभाज्य अंग हो, जैसे घड़े का आकाश महाकाश का अविभाज्य अंग है, तरंग समुद्र का अविभाज्य अंग है, मिट्टी के बिना मिट्टी के बर्तन नहीं रह सकते, पानी के बिना बर्फ नहीं रह सकती, लेकिन बर्फ के बिना पानी रह सकता, बर्तनों के बिना मिट्टी रहती है, तरंग के बिना पानी रहता है, ऐसे शरीर के बिना भी तुम रहते हो। शरीर मरा पड़ा तुम देखते हो, मरने के बाद देखते हो कि ये मरा पड़ा है, कुटुंबी रो रहे हैं, ये है वो है। तो दुख आता है तो तुम सावधान नहीं रहते हो, तो दुख के साथ जुड़ जाते तो मैं दुखी हूं, बीमारी आई तो बीमारी के साथ जुड़ गए तो मैं बीमार हूं, बेचैन हूं, परेशान हूं, उसमें मैं पना आप सत्ता दे देते हैं। जासु सत्य ताते कर जड़ माया, तुम्हारे सत्य स्वरूप आत्मदेव से ये जड़ माया का शरीर सच्चा लगता है, बीमारी सच्ची लगती है, दुख सच्चा लगता है, बचपन सच्चा लगता है। सच्चा होता तो ठीक था, बचपन तो चला गया, तुम हो तो तुम सत्य हो, बचपन सत्य नहीं है। तुम सत्य हो बचपन सत्य नहीं, तो बचपन की मूर्खता भी सत्य नहीं है, बचपन की होशियारी भी सत्य नहीं है, ऐसे ही जवानी का काम क्रोध भी सत्य नहीं है, लोभ मोह भी सत्य नहीं है, ये गुण पंचभूतों के हैं। तो सत्य तो तुम हो, लेकिन तुम जिससे जुड़ जाते हो सब सत्य 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 लगते हैं। तुम जिस वस्तु को महत्व देते हो वो प्रभावशाली हो जाती है। आहा, कितना अच्छा है, अब इसका महत्व तुमने दिया और तुम्हारा ही रस इसमें प्रवाहित हो गया, तो बेकार हो गया। तो तुम सतरूप हो, चेतन रूप हो, रस रूप हो, जिस चीज को तुम महत्व देते हो वो रसीली हो जाती है। तो शरीरों में गंदगी, नाक में लीट भरी है, मुंह में थूक भरी है, आंख से कीचड़ निकलती है, कान से खुरेद निकलती है, नीचे के अंगों से मलमूत्र निकलता है, रोम कूपों से गंदगी निकलती है, लेकिन काम दृष्टि से एक दूसरे को शरीर को महत्व देते हो तो नई शादी वालों को सुंदरी को सुंदरा अमृत पुत्र लगता है और सुंदरे को सुंदरी अमृत की पुतली लगती है। फिर जब लड़ते झगड़ते तो बोले रान तू तो चंद्रमुखी नहीं है, तू तो ज्वालामुखी है, तो तू प्राणनाथ नहीं है, तू तो अनाथ है, मेरे को अनाथ कर दिया। फिर लड़ते तो ऐसे लड़ते, तू नश्वर शरीर को, नश्वर संबंधों को, नश्वर विकारों को तुम शाश्वत अगर महत्व ना दो तो वो तुम्हें नचा नहीं सकते, तुम्हें रुला नहीं सकते, तुम महत्व देकर रो रहे हो, ये हो गया मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। परलय नहीं महापरलय भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ती। कई बार परलय नहीं महापरलय आत्यंतिक परलय हुए, फिर भी तुम्हारा अस्तित्व मिटा नहीं सकते, भगवान भी तुम्हें मिटा नहीं सकते। शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा, फिर भी तुम डर रहे हो। क्यों? कि तुम मिथ्या से जुड़े हो। मिथ्या में तो कंपन होता ही रहता है, मिथ्या में तो परिवर्तन होता ही रहता है। तुम कितना भी थामना चाहो नहीं थमेगा। जो भोजन किया उसको थामो, पेट में रखे रखो तो बीमार हो जाओगे। जो भी थाम, जो भी मिला है पसार होने के लिए, पानी पिया वो भी पसार होने के लिए, भोजन भी पसार होने के लिए, बचपन भी पसार होने के लिए, जवानी भी पसार होने के लिए, दुख भी पसार होने के लिए, सुख भी पसार होने के लिए, सब पसार होने वाली चीजें हैं। लेकिन तुम पसार हुए क्या? अपने को छोड़ के कभी गए क्या? नहीं गए। तुम्हारे आगे से सब पसार हो गया। तुम पसार नहीं होते, तुम नित्य हो। तुम अपने आप के साथ नित्य रहते हो, अपने को छोड़कर दो मिनट के लिए भी कहीं नहीं जाते हो। गहरी नींद में भी अपने में ही हो जाते हो। इंद्रियों से हटकर मन में आ गए, मन से हटकर बुद्धि में आ गए, बुद्धि से हटकर जीवत्व में आ गए, जीवत्व से अनजान होकर अपने आप में आ गए, अपने ब्रह्म स्वभाव में आ गए। अपने ब्रह्म स्वभाव से जीव का स्पूर्णा हुआ, बुद्धि का हुआ, मन का हुआ, इंद्रियों का हुआ, जगत का व्यवहार हुआ। रोज एक था राजा, वही परमात्मा राजा तुम्हारा आत्मा तुम, एक थी रानी उसकी सुरता वृत्ति, उसी से सारा पसारा हुआ। एक था राजा एक थी रानी शुरू हो गई कहानी। रोज कहानी शुरू होती है, रोज समेट के अंतर में चली जाती। ऐसे बचपन भी कहानी हो गई, जवानी भी कहानी, दुख भी कहानी, सुख भी कहानी। लेकिन कहानी को जानने वाला कौन है? उसको अगर खोजे तो शांत अवस्था आएगी, और शांत अवस्था से बाप रे बाप कैसे कल्याण हो जाता है, कितना फायदा हो जाता है उसका, तो मैं आपको कितना भी बताऊंगा कम होगा। तो अब एक सुंदर उपाय है कि आप दुख नहीं चाहते हैं, विकार दुख दिए बिना छोड़ते नहीं, तो आप विकार भी नहीं चाहते। हकीकत में विकारों से आनंद चाहते, सुख चाहते। अगर आपको शुद्ध सुख और आनंद मिल जाए तो फिर आप विकारी जीवन से अपने आप को उठा हुआ मानकर खुश होते हो। सबसे नीच में नीच मनोवृत्ति उसी की होती जो अपनी हानि करके भी दूसरों को सताए, दूसरों को दुखी करके मजा ले। ऐसे लोग भी होते मनुष्य में, वो ऐसी कोई नीच योनियों से आए हैं। जैसे चूहा अपना समय खराब करके भी आपके कपड़े काट के चला जाएगा, और भी प्राणी उनको लेना देना नहीं। अमेरिका में ऐसे लोग मैंने देखे कि बैठे घंटों भर, मछली फंसे, मछली फंसी ऊंची किया तड़फाई मर गई, फिर उसी तालाब में छोड़ दी। तो किसी को अपना समय शक्ति बर्बाद करके किसी को सताने का मजा लेना, ये मानवता की एकदम नीचे में नीची आखिरी पराकाष्ठा है। अपना समय शक्ति बुद्धि पैसा खर्च करके मछली फंसाते हैं, या और किसी को समय देकर बम खोजा और फिर अपने पैसे लगाकर अमेरिका ने तबाह कर दिया जापान के सुंदर शहर को। तो अपना नुकसान सह के भी दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाना, अपना समय शक्ति खर्च करके भी सासू की निंदा करना, अपना मन खराब करके भी पड़ोसी की निंदा करना, अपना समय शक्ति और बुद्धि खराब करके भी किसी पर झूठे दोषारोपण करना, लगाना लगवाना, ये मानवता की आखिरी नीचता की आखिरी, मानवता की नहीं नीचता की आखिरी। उससे कुछ थोड़े ऊपर उठे हुए लोग, जान और अपना सब बचाकर दूसरों की हानि होती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने को फायदा तो हो रहा है ना। अपनी हानि को बचाकर दूसरे को हानि देकर भी लौकिक फायदे में जो उलझे हुए हैं वो छठे नंबर के होते हैं। पांचवें नंबर के वे होते हैं जो अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाए तो कोई बात नहीं, अपना लाभ होता हो। और चौथे नंबर के ये हैं कि अपने लाभ में दूसरे की हानि, चलो क्या करें, सहना पड़ता है, नहीं होती तो अच्छा है लेकिन अब क्या करें, दूसरे की हानि दिखती है अच्छी नहीं लगती लेकिन सह लेते हैं, दूसरे की हानि, अपने लाभ को महत्व देते हैं। तीसरे नंबर के वे लोग होते हैं कि अपना ही लाभ, दूसरे की चिंता नहीं करते। दूसरे नंबर के वे लोग होते हैं कि अपनी हानि न हो और दूसरे को लाभ हो। और पहले नंबर के वे लोग हैं कि अपना तन, अपना मन, अपनी योग्यता, अपना सब कुछ खर्च हो जाए और दूसरे लोग उन्नत होते, वो महात्मनस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता, वो महात्मा पुरुष है, अपने तन को, अपने मन को, अपनी योग्यताओं को खर्च करके भी दूसरों की उन्नति चाहे, दूसरों की उन्नति से ही उनको परितृप्ति है, क्योंकि दूसरों के रूप में अपने को ही देखते हैं। भगवान ऐसे पुरुषों के लिए कहते हैं महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिता, मुझ परमात्मा देव की प्रकृति का आश्रय उन्होंने लिया है। जैसे भगवान अपना बड़प्पन छोड़कर भी पुत्र होना स्वीकार कर लेते, मित्र होना स्वीकार कर लेते, नृत्य सीखना स्वीकार कर लेते, थप्पड़ खाना स्वीकार कर लेते हैं। तुमने तो सत्संग के प्रसंग सुने हैं, सचिन भरी छाछ पर नाचना स्वीकार कर लेते हैं, हाय सीते करके रोना स्वीकार कर लेते हैं, हे भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण में अयोध्या में क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐसा करने को भी स्वीकार कर लेते हैं। प्रातः समय उठ रघुनाथा, मात पिता गुर नावई माथा, ये सब स्वीकार करके भी हमारा मंगल चाहें, क्योंकि हमारे रूप में वो अपने को ही देखते, अपने रूप में हम ही को देखते। ये ज्ञानमय दृष्टि महापुरुषों की, भगवान की है। अब सात दृष्टि है, फिर से बोलता हूं, अपनी लौकिक हानि आदि दैविक खर्च, आध्यात्मिक खर्च करके भी दूसरों को उन्नत करना, ये महापुरुषों की दृष्टि है, उत्तम पुरुष के, महान पुरुष के लक्षण है। उससे थोड़ा कम अपनी हानि न हो और दूसरों को लाभ हो जाए, ये दूसरे नंबर का। तीसरे का अपना ही लाभ हो, दूसरे की चिंता नहीं। और चौथे नंबर का अपना लाभ से दूसरे की हानि होती हो तो सह लेंगे, चलो जाने दो, होती तो क्या करें, अपने को तो लाभ होता है ना। पांचवे वे लोग होते अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि पहुंचा देते फटाक से। छठे उनसे भी गिरे होते हैं कि अपनी जान बचाकर दूसरों की हानि करके अपना लाभ होता है तो देर मत करो। और साथ में इतने नीच होते हैं कि अपना लाभ हो चाहे अपनी हानि हो, दूसरे को तड़पाओ, दूसरे को दुख दो, दूसरों को सताओ। वे फिर बुरी तरह सताए जाते हैं, लेकिन दूसरे को सता के सुखी होने में जो लगे वो मानवता की एकदम अत्यंत नीचता पे, उनको मानव कहना भी मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपे वो पशु है, असुर है, आसुरम भावम आश्रिता। जो सत्य की ओर प्रवृत्त होना चाहते हैं उनको अपने जीवन में है मन और वाणी, इन तीन को नियंत्रित करना चाहिए। देह से उच्छलंकता ना हो, मन की उच्छलंकता ना हो, वाणी की उच्छलंकता ना हो। इन तीन पर ध्यान दें तो ये लोग उन्नति को पा लेंगे। शरीर की उछलंकता, न खाने जैसा खा लिए, न सोने जैसा सो लिए, न करने जैसा कर लिया, विकारों में पड़े रहे, ये शारीरिक उछलंकता है। टाइम से खाया, टाइम से रहे, टाइम से अब दही और जामफल खा लिया, ये शारीरिक उद्दंडता है, मानसिक बेवकूफी है। दही और जामफल खाना, एकदम कफ बनेगा, जामफल भी कफ वाले, दही भी कफ बने, जठरा मंद हो जाएगी, खाया हुआ पचेगा नहीं, बुखार शुरू हो जाएगा। अमृत बोलते जामफल को। खैर, अपनी मानसिकता उन्नत रखनी चाहिए। सत्य की ओर प्रवृत्त होना मतलब परमात्मा की ओर प्रवृत्त होना, उसमें जीवन संयमित होना चाहिए, सद्भाव संपन्न होना चाहिए। सत्य की ओर प्रवृत्ति करना है तो परमात्मा प्राप्ति आसानी से होगी। झूठ कपट ये वो करते रहेंगे, हरिओम हरिओम करते होंगे, अल्लाह हु अकबर करते रहेंगे, अल्लाह मिलने वाला नहीं है। अल्लाह सत्य स्वरूप है, भगवान गॉड सत्य स्वरूप है, सत्य का आश्रय लो। सत्य बोले झूठ त्यागे, बोले झूठ के बिना काम नहीं चलता, बिल्कुल बेवकूफी की बात है। झूठ के बिना काम नहीं चलता तो सतत झूठ बोल के दिखाओ, भूख लगी है बोलना नहीं, भूख लगी और झूठ बोलो नहीं लगी है तो भूखे मर जाओगे। झूठ से झूठ, झूठ के बिना काम नहीं चलता, ये बिल्कुल झूठ बेवकूफी है। सच्चे आदमी तो सच्चे को चाहते हैं, लेकिन झूठे बेईमान आदमी भी सच्चे को चाहते। झूठा बेईमान सेठ भी नौकर ईमानदार चाहेगा, बेईमान पति भी पत्नी से ईमानदारी चाहेगा, बेईमान नेता भी अपना सेक्रेटरी और अपना नौकर ईमानदार चाहेगा। ईमानदार तो ईमानदार को चाहते, लेकिन बेईमान के हृदय में भी ईमानदारी का आदर है। इसलिए बेईमानी के बिना काम नहीं चलता, ये भरम निकाल देवे। अर्जुन मोह में आ जाता है, विषाद में आ जाता है, भगवान उसका उत्साह बढ़ाते, मोह निवृत्त करते, विषाद निवृत्त करते, आध्यात्मिकता की महत्ता बताते बताते अर्जुन को। शांत भाव में विवेक पूर्ण और शांत चित्त ठंडा दिमाग बनाकर निर्णय करने की प्रेरणा देते। ये भारतीय संस्कृति का अध्यात्मवाद पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने में सक्षम है, और आरंभ में इसी आध्यात्मिक मार्गदर्शन से ही दुनिया के लोगों का मंगल किया था भारत ने, और अब फिर से जरूरत पड़ रही। भारत विश्व गुरु बनेगा, ये शुरुआत की थी 40 साल पहले संकल्प की, अब तो बहुत लोग जुड़ गए इस संकल्प से, अब तो बहुत लोग बोलने लगे भारत विश्व गुरु बने, विश्व गुरु बनेगा करवट। 40 साल पहले का मेरा संकल्प था। शुभ संकल्प आप करो बहुत जन हित आए, तो वो कईयों के द्वारा पूर्ण होने लगेगा। जरूरी नहीं कि अपन ही करो, अपने ही उसका श्रेय पाओ। अपने श्रेय की इच्छा नहीं करो, सबके श्रेय में अपना श्रेय छुपा है। विवेकानंद ने कहा था, गांव गांव गली गली घर घर में साक्षरता मेरा उद्देश्य है, अगर मैं ये पूरा नहीं कर पाता हूं, मिशनरी वालों मुझे मेरे पीछे लग गए और बदनाम कर रहे हैं, तब भी मेरा संकल्प ये पूरा होगा कि भारत में साक्षरता का अभियान चलेगा। साक्षरता के द्वारा लोग पढ़ लिख के अपने अधिकार की रक्षा, दूसरे की रक्षा में प्रवृत्त हो। आज हो रहा है, जो सातम आए एक नंबर का मनुष्यता की ऊंचाई पर है उसके संकल्प में बड़ा बल होता है। सर्वांगी सफलता चाहते हो तो आत्मा की अनंत शक्ति से जुड़ जाओ। पंचभूतों में जो शक्ति है वो भी आत्मदेव की है और सूर्य में जो सप्त रंग है और एक एक रंग का प्रभाव है, सबसे आसमानी रंग ज्यादा हितकारी। आसमानी रंग घर में लगा हो तो अच्छा है कलर। आसमानी रंग की बोतल में पानी भर के रखे और वो पानी पीने में काम लाए तो फायदा होगा। बोतल को अर्थिंग न मिले ऐसे जन तेल घी सूर्य के किरण में रखकर उपयोग करे, पानी सूर्य के किरणों में फेंट मार के उपयोग करे, जीवनी शक्ति बढ़ती है। 15 से 30 मिनट तक सुबह सूर्य के किरणों का स्नान बहुत हित करता है। ऋग्वेद में सूर्य स्नान की महिमा है, वेद में उसका फायदा लें। शरीर को तंदुरुस्त रखे, मन को प्रसन्न रखे और बुद्धि को बुद्धिदाता के ज्ञान से परिपक्व कर दे। इससे आपका तो भला होगा लेकिन आपके संपर्क में आने वालों का भी भला होगा। आप स्वस्थ रहते हैं, आत्मा अभिमुख रहते हैं, आपका मंगल होता है लेकिन आपके मंगल में विचार औरों का भी मंगल करते हैं। जो लोग अनुभूति चाहते हैं तो तुम्हारा निसंकल्प शांत शांति भंग ना हो। अनुभूति में तो शांति भंग होगी। नरसिंह मेहता ने कहा जब तक आत्म विश्रांति नहीं मिली, आत्म तत्व को नहीं जाना, तब तक साधना सर्व झूठी है। ये छोटी मोटी अनुभूति के लिए लालायित मत हो। सच्ची अनुभूति तो यह है कि वास्तव में ये जो 5 भूत हैं उनका अस्तित्व नहीं है, परमात्मा सत्ता में ये फुरफुराते हैं। ये फुरफुरा के बदल जाते हैं, काम बदल जाता है, क्रोध बदल जाता है, 5 भूत बदलते रहते हैं, उनके स्वभाव गुण ये सब आके बदल जाते हैं, लेकिन परमात्मा तत्व ठोस है, वज्र से भी ठोस है और आकाश से भी अधिक अचल है। लीला तो यही है, लीला में प्रभु की लीला है। ऐसा सो में विश्रांति योग करें तो शुरू शुरू में भगवान नाम का जप दीक्षा लेकर जो अभ्यास करते हैं वो प्रारंभिक भक्ति है। उसमें विक्षेप रहता है, मन लगे न लगे, थोड़ा ऐसा वैसा। ये तत्व ज्ञान की दृष्टि से पहली भूमिका है और भक्ति की दृष्टि से वैद्य भक्ति है। अभ्यास करना पड़ता है ना जप का, ध्यान का, ये आरंभिक भूमिका है। योग की दृष्टि से इसे क्षिप्त अवस्था बोलते हैं, विक्षिप्त अवस्था बोलते हैं, थोड़ा संसार में थोड़ा भगवान में। ये अभ्यास बढ़ते बढ़ते तब रुचि का रूप लेता है। अभ्यास जब रुचि का रूप लेता है तो एकाग्रता बढ़ने लगती है, सत्य संकल्प सामर्थ्य आने लगता है, सुख दुख में कुछ अंश में समता आने लगती है। चलो कोई बात नहीं, वही ज्ञान की दृष्टि से योग की दृष्टि से ध्यान हो जाता है रुचि में। जब जप ध्यान में नियम में रुचि होने लगी भगवान में तो एकाग्रता हुई योग की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से हो गया ध्यान धारणा। तत्व ज्ञान की दृष्टि से दूसरी भूमिका हो गई और भक्ति की दृष्टि से भगवत साधना होने लगती है।
तो पहले अभ्यास बढ़कर रुचि और रुचि बढ़कर रति और रति विश्रांति में चली आती, पराकाष्ठा हुई। ध्यान देना बड़ा सार सार बात, साधक के लिए हितेशी बात है। अभ्यास से कभी ऊब जाएंगे, कभी माला किया कभी नहीं किया, ये आरंभिक है। अभ्यास करते करते फिर माला किए बिना, जब ध्यान किए बिना अच्छा न लगे, नहीं चाहते हुए भी करें तो समझ लो तुम्हारे अभ्यास ने रुचि की अवस्था ला ली, और रुचि बढ़ते 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 फिर रति, रति में रस आएगा और वो रति में विकार शांत होने लगेंगे, आकर्षण शांत होने लगेंगे, गंदी आदतें शांत होने लगेंगी। अभ्यास रुचि रति आ जाएगी, परमात्मा विश्रांति, फिर सब कुछ करोगे लेकिन मन परमात्मा में विश्रांति पाएगा। उठत बैठत वही उठाने कत कबीर हम उसी ठिकाने। श्री कृष्ण ने कहा अभ्यास योग युक्ति न चेतसा नाने कामिना, अन्य अन्य से व्यवहार करो लेकिन फिर व्यवहार के पहले गहराई में मेरा चैतन्य नारायण, व्यवहार के बाद में मेरा चैतन्य नारायण। व्यवहार तो आदि भौतिक हुआ लेकिन आपने उसका आध्यात्मिककरण कर लिया। मान अपमान हो जाए तो मान हुआ, तो मरने वाले शरीर को देखकर मान हुआ, अपमान हुआ तो सीखा हुआ, उसको जानने वाला मैं ज्यों का त्यों। ये अभ्यास करो, ये अभ्यास थोड़े दिन में ही आपको रुचि में ले जाएगा, थकान मिटा देगा, पाप मिटा देगा, आकर्षण मिटा देगा, विकर्षण मिटा देगा, विद्रोह मिटा देगा, विद्रोहियों का भय मिटा देगा। केवल अभ्यास रुचि का रूप लेते ही आप स्वनिर्भर हो जाएंगे, पैसे पर निर्भर नहीं रहेंगे, किसी साहब सेठ साहूकार पर निर्भर नहीं रहेंगे, किसी देवी देवता की कृपा पर भी निर्भर नहीं रहेंगे,